नियमसार नामक जो शास्त्र है, उस शास्त्र पर गुरुदेव के जो प्रवचन हुए हैं, उसमें हम आज पृष्ठ क्रमांक 55 पर से चालू करते हैं। कल हमने गाथा नंबर 4 देखी थी, वहां ऐसा हमको बताया था कि यह जो रत्नत्रय जो है, यानी दर्शन किसे कहना, ज्ञान किसे कहना और चारित्र किसे कहना, इसकी बात अभी भेद करके हमको समझाएंगे। अब देखो, हमने कल देखा था, ये हम चौथे नंबर की जो गुजराती अनुवाद है वह भी हम पढ़ेंगे, तो देखो हमें ये पता लगता है कि 6 नियम मोक्षो उपाय, ये नियम जो है, यानी यहाँ कार्य नियम की बात हो रही है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वह मोक्ष का उपाय है और उसका फल निर्वाण है। अभी प्रवचन सार में भी यही बात आई थी कि जो वितराग चारित्र है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ पर भी वही बात है। अभी कह रहे हैं कि इसके हम वेद पूर्वक तीनों का भिन्न भिन्न निरूपण करेंगे। नीचे गाथा नंबर जो 4 है, वो गाथार्थ उपरणु प्रवचन, वहां से चालू करते हैं। वो होने के बाद फिर दोबारा ये 11वां नंबर का जो कलश है वो देखेंगे। रत्नत्रय रूप नियम मोक्षनो उपाय छे, तेनु फल परम निर्वाण छे। जो शू किदूं के भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु छे। अभी भगवान आत्मा कहने से किसकी बात चल रही है रसीला बेन? हाँ, मेरी खुद की, यानी अपने स्वयं की, ऐसा समझना कि भगवान आत्मा केवो छे, तो कहे जे शुद्ध छे, क्यारे के अत्यारे, हमणा जारे हूँ पर्याय में शुद्ध थईश त्यारे ये शुद्ध छे एम नथी, अत्यारे त्रणे काळे स्वभावथी हूँ शुद्ध ज छू, अने केवो छू, चैतन्य स्वरूप छू। चैतन्य एटले ज्ञान दर्शन में छू, अने एवो एवी वस्तु छू एटले एवो द्रव्य छू। तेनो जेमा स्वीकार थयो छे, एवो अंतर्मुख अनुभव मां प्रतीति अर्थात तेनु श्रद्धान, तेनु वेदन, वेदन अर्थात स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान तथा तेमा रमणता लीनता जे थाय ते रत्नत्रय रूप नियम छे। यहां जो नियम कह रहे हैं वह कार्य नियम कह रहे हैं, नियम कर अने ते मोक्ष नाम पूर्ण सुखनी प्राप्ति नो उपाय छे। तेनु फल पूर्ण सुखमय एवं परम निर्वाण पद छे। हवे ओलो अज्ञानी कहे छे आपने आ करवू तो छे पण हमणा नहीं, एक सरखाई थई जाय पछी वृद्धावस्था थे करीशू। यानी क्या कहने चाहते हैं? यानी अभी सारा इंतजाम कर दूं, छोकराओं ने परणावी दूं, छोकरियों ने हारा घरे मुकूं, पछी छोकरा ने बराबर सरखी दुकाने अथवा के वेपार में बिहाड़ी दूं, अने पछी गरड़ा थशे त्यारे एक इंद्रिय काम नहीं करे, सामे वालो हूं के हूं बोलिया एम करीने वात करे, वाँचवा जाए तो वंचाय नहीं, त्यारे आपणे आत्मानु करशुं, केम के बीजुं काम ज नहीं होय ने। એમ કે શું કે છે જો? પણ હમણાં નહીં, કોણ કે છે? આ દોઢ જ્ઞાની, એટલે દોઢાયો, એટલે જે પોતાને સર્વજ્ઞથી વધુ માનતો હોય એ કેવો છે? હવે ઓલો અજ્ઞાની કહે છે, જો ભાષા તો જો કેટલી સારી છે, ઓલો અજ્ઞાની કહે છે આપણે આ કરવું તો છે પણ હમણાં નહીં, એમ કે બારમાં કઈક સરખાઈ થઈ જાય, પેટ પાણી કી પૂરી વ્યવસ્થા હો જાય, અભી તો કિસી કે પાસ સાત આગે કે ક્યા બોલતે સાત પીઢી, વો ખાએ ઇતના પૈસા હોતા હૈ ફિર ભી ઓર કોઈ વ્યવસ્થા કરું એસે મન મે લગતા હૈ। તો કહેતે બારમાં સરખાઈ થઈ જાય પછી વૃદ્ધાવસ્થા થશે, આ કરીશ।
तो ऐसा नहीं कहता कि शादी करनी है तो वृद्धावस्था में करेंगे, अभी पैसा कमा लू फिर मत सोचना।
पण भाई हमणा नहीं ने पची पची एम करता करता जिंदगी चाली जाय छे। सब में ज्ञान दीपिका मां धोबी नु दृष्टांत आवे छे। શું કે નદીના ઘાટ પર કપડાં લઈને ધોબી ધોવા ગયો, ત્યાં થોડા કપડાં ધોયા ત્યાં તેને તરસ લાગી, પણ તેને થયું લાવ ને હજુ થોડા વધારે કપડાં ધોઈ લઉં પછી પાણી પીશ। પછી થોડા કપડાં ધોવાયા ત્યાં તો તેને એકદમ ચક્કર આવ્યા ને તે પાણીમાં પડી ગયો, જોત જોતમાં દેહ છૂટી ગયો, જોત જોતામાં દેહ છૂટી ગયો। એમ અજ્ઞાની હમણાં નહીં પછી પછી કરીશું એમ વિચારે છે, પણ બાપુ શું અત્યારે તો જરા ક્યાં હેતલબેન દુબઈ જઈ આવું એમ કે છે, અહીંયા લખ્યું છે શું કે છે? પછી પછી કરીશું એમ વિચારે છે, પણ બાપુ પછી તો પછી જ રહેશે, કોઈ દી પેલું થશે જ નહીં। માટે મુનિરાજ કહે છે હું આ રત્નત્રય રૂપ નિયમ જે મોક્ષનો ઉપાય છે તે હમણાં જ કરું છું। એમ કહેતા નથી તમે પણ કરો, કે તમારે જે કરવું હોય તે કરો, એમ કે હું તો હમણાં કરું છું, હું તો મારું જોઉં એમ કે
એસા નહીં લિખા કે પહેલે શાસ્ત્ર લિખો બાદ મેં કરીશ। મુનિને એસા નહીં લિખા કે પહેલે શાસ્ત્ર લિખ લો બાદ મેં વો રત્નત્રય રૂપ મોક્ષ કા ઉપાય કરીશ।
તેનું ફળ પરમ નિર્વાણ છે, આવી વાત છે। હવે કહે છે વળી ભેદ કથન દ્વારા અભેદ સમજવા અર્થે, અભેદ સમજાવવા અર્થે શું કહે છે કે આ ભેદથી જે કથન કરવામાં આવે છે તેનું પ્રયોજન શું? તો કહે છે તેથી આ અભેદ જે આત્મા છે તેને સમજાવવા માટે આ ભેદ કથન કરવામાં આવે છે। આ ત્રણનું ભેદ પાડીને જુદું જુદું નિરૂપણ હોય છે, ભેદ કથન દ્વારા અભેદ સમજાવવા અર્થે। એટલે શું કે નિશ્ચય રત્નત્રયને સમજાવવા માટે અહીં વ્યવહાર રત્નત્રય કહેશે, આહા વ્યવહાર સમકિત, વ્યવહાર જ્ઞાન અને વ્યવહાર ચારિત્રના નિરૂપણ દ્વારા નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કેવા હોય છે તે બતાવવું છે. માટે આ ત્રણનું, વ્યવહાર સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું ભેદ પાડીને જુદું જુદું નિરૂપણ હોય છે એમ કહે છે. વ્યવહાર રત્નત્રય છે તો બંધનું કારણ સરાગ ચારિત્ર કીધું ને અત્યારે, છતાં અબંધરૂપ અભેદ સમજાવવા તેનું નિરૂપણ હોય છે એમ વાત છે. સમજાણું કાંઈ? ગાથા ચાર ટીકા ઉપરનું પ્રવચન. રત્નત્રયના ભેદો પાડવા વિશે અને તેમના લક્ષણ વિશે આ કથન છે. જુઓ, આમાં રત્નત્રયના ભેદો પાડવા વિશે અને તેમના સ્વરૂપ શું છે તે વિશે એમ બે પ્રકારે કથન છે. તેમાં હવે ભેદ પાડવા વિશે પહેલી વાત, સમસ્ત કર્મના નાશથી સાક્ષાત મેળવાતો મહા આનંદનો લાભ તે મોક્ષ છે. શું કીધું? કે સમસ્ત આઠે કર્મના નાશ થતા મોક્ષ એટલે કે મહા આનંદનો લાભ થાય છે. એનો અર્થ શું લેવો? કે મોક્ષ મેં તો સિર્ફ આનંદ આનંદ, સુખ સુખ સુખ, સુખે કે અલાવા વહા કુછ હૈ હી નહીં. ખ્યાલ મેં અરવિંદભાઈ, વો પરસો આયે થે ભાઈ સાહેબ હમારે પાસ, મોક્ષ હૈ કે નહીં પૂછને વાલે, ઓર સલામ કા માર કે ગયે, 20 મિનિટ મેં પટાયે, 7 પ્રશ્ન પૂછે ઉન્હોને, સાતો કા જવાબ દિયા. ભાઈ એ મોક્ષ જો હોતા હે ના તો મોક્ષ કહાં હોગા ભાઈ સાહેબ? હા સાહેબ. અરે જહા બંધ થા વહી મોક્ષ હોગા ના, મુક્તતા વહી હોગી ના. તો મોક્ષ કહેને સે તો લોક સમજતે કે અરે કિધર, ઉધર ઉધર, ઉપર ઉપર, ઓર થોડા ઉપર, અનુદેશ અનુ, ઓર થોડા સા એસા હાથ ઉપર કરેગા તો વો મોક્ષ નહીં હે. એ કઈ ક્ષેત્ર થોડી હે મોક્ષ રૂપી. જૈસા નિગોદ કા કઈ ક્ષેત્ર કહેતે કે આ નિત્ય નિગોદ કા ક્ષેત્ર હૈ વૈસા મોક્ષ કા ક્ષેત્ર. અરે ભાઈ વો તો ઉપચાર સે વૈસા કહા ગયા હૈ. વાસ્તવિક મુક્તતા તો એ જીવ કી અવસ્થા હૈ, સિદ્ધ ભી જીવ કી અવસ્થા હૈ, અરહંત ભી જીવ કી અવસ્થા હૈ, પંચ પરમેશ્વરી રૂપ જીવ કી અવસ્થા હૈ. લેકિન યે પતા નહીં હોને કે કારણ કિસને દેખા હૈ મોક્ષ, એસા પૂછતે હૈ. અબ કહેતે વહાં સે અભી જૈસા હમારા કોઈ બહાર કા આદમી જાવે તો ખત લિખતા હૈ કે ભાઈ આમ ઇધર અચ્છે હૈ તુમ કૈસે હો. અરે પણ વો વહાં ગયા હુઆ જીવ હૈ કૈસા? કે વો તો પૂર્ણ વિતરાગ હૈ ઓર પૂર્વ સર્વજ્ઞ હૈ. વિતરાગ કો કહાં લગે હૈ કે તુમસે હમ પત્ર દ્વારા વાત કરે, એસા કરે વૈસા કરે. તો યહાં ક્યા કહે રહે હૈ? યહ જો હૈ ક્યા મોક્ષ કૈસા હૈ કે આઠે કર્મનો નાશ થતા મોક્ષ એટલે કે મહા આનંદનો લાભ થાય છે. સમસ્ત કર્મના નાશથી એમ કીધું, એ તો વ્યય થયો પણ ઉત્પાદ શાનો થયો? તો કીધું કે સાક્ષાત મેળવા તો મહા આનંદનો લાભ તે ઉત્પાદ છે. આહા, ભગવાન આત્માને તેની દશામાં સાક્ષાત મહા આનંદનો એટલે અતિન્દ્રિય અનંત આનંદનો લાભ થયો તે મોક્ષ છે. લ્યો આ મોક્ષ. હા, હાથ મે રખ્યો હે આવલે કે જૈસા બતા દિયા ના મોક્ષ ક્યા હોતા હૈ. મોક્ષ એટલે શું? પર્યાયમાં મહા આનંદનો લાભ તે મોક્ષ છે. મોક્ષ મુક્તિ શબ્દ છે ને, એટલે પેલા પરિભાષા કહી કે સમસ્ત આઠે કર્મના નાસ્તી મોક્ષ થાય છે, આ નાસ્તી કહી. પણ તેના કર્મના નાસ્તી અસ્થિમાં મળ્યું શું? તો કહે છે સાક્ષાત મહા આનંદનો લાભ મેળવાય છે. કિતાબ હૈ આપકે પાસે? એક્સ્ટ્રા હૈ કે ભાઈ સાહેબ? क्या कहते देखो लेफ्ट साइड में से नाच थी अस्थि में मळ्युं शुं तो कहे छे साक्षात महा आनंद नो लाभ मेळवाय छे। आहा हा भगवान आत्मा पूर्ण अमृत नो सागर प्रभु छे। तेमाथी पूर्ण अमृत नो पर्याय प्रकट थाय एटले के आनंद थी तृप्त तृप्त परितृप्त पर्याय नो लाभ थाय तेनु नाम मोक्ष छे। पेज नंबर 57 शू कीधु जो के एवो आनंद एवो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त थाय ते जीव एकदम समाधानी तृप्त तृप्त थई जाय छे अने ए जे पर्याय मां जे तृप्तता छे परितृप्त એટલે પરિપૂર્ણ તૃપ્તતા એટલે સમાધાન સમાધાન અથવા કે કહો અતિન્દ્રિય આનંદ તેનો ત્યાં લાભ હોય છે ક્યાં મોક્ષમાં। હા હા અંદર વસ્તુ તો અતિન્દ્રિય આનંદમય છે જ વસ્તુ એટલે આત્મા જ અતિન્દ્રિય આનંદ આનંદનો ભરપૂર દરિયો છે। આત્મા વસ્તુ છે કે નહીં છે ને તો તેનો સ્વભાવ જ જ્ઞાન અને આનંદ છે। હવે સ્વભાવ છે તેનું માપશું શું કહેવા માંગે છે કે જે સ્વભાવ હોય એને કઈ સીમા નહીં હોય એને કઈ મર્યાદા નહીં હોય એને કોઈ માપ નહીં હોય એ તો અમાપ એવો જે સ્વભાવ છે અમર્યાદિત અસીમ એવો જે સ્વભાવ છે તેનું માપશું। હવે લોકોને બિચારાઓને આ વાતની ખબર નથી એટલે એમને આમાં વિશ્વાસ ન બેસે પણ ભાઈ વિચાર કરીને નક્કી તો કર કે વસ્તુ શું છે। દેખો જબ હમ કહેતે ને કે આપકો હમ અભી લઘુ સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા પઢાતે હૈ તો દ્રવ્ય દ્રવ્ય કહેને સે વો ગુણો કે સમૂહ કો દ્રવ્ય કહેતે તો ગુણ કિતને યે સમજ મે આવે તો ચક્કર આ જાય એસી બાત હૈ યાની ઇતને અનંત 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 ગુણો કા એસા એક સમૂહ જો હૈ ऐसा मैं स्वयं अनंत गुण स्वभाव में हूं अनंत गुण में हूं और अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय जो है उसका जो एक पिंड है वो मैं हूं। लेकिन कभी उसने ऐसा सोचा ही नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं पन भाई विचार करीने नक्की तो कर के वस्तु सूचे। विचार करता तने खबर पड़शे के मार्ग आ एक ज साचो छे। लेकिन सुने तब ना तब तो विचार करे सुने ने तो काहे का विचार करे। बाहर मा वस्तु ना स्वरूप थी अजान कोई मोटा महंत ना साधु ना नाम धरावी ने फरे पन ए मार्ग यथार्थ नथी। पूर्व ना पुण्य ना उदय काल मा बाहर मा सामग्री भपको देखाय छे अने तेज अज्ञानी ने प्रसिद्ध छे पन अरे पोतानु जे अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव आनंद स्वरूप छे તેને તે દેખતો નથી। અહીં કહે છે સમસ્ત કર્મના નાશથી સાક્ષાત મેળવાતો એટલે કે પર્યાયમાં પ્રાપ્ત થતો પ્રકટ થતો આનંદ કેમ કે અંદર પોતે આનંદરૂપ તો છે જ પુણ્ય પાપના જે વિકલ્પો છે તે દુઃખ છે। તો પુણ્ય પાપનું જે ફળ મળે તે કેવું હશે સુખમય હશે ને શું કે છે હા તમે પ્રવચન સારવા નહીં આવે તને વાત એ જ ચાલતી હતી જો કેવી મજા છે પ્રવચન સારમાં ને આમાં વિષય એક જ ચાલે છે સાયમલ્ટેનિયસલી વાં ક્યાં કહા હતા કે યે સ્વર્ગ કા જો વૈભવ હૈ વો ક્લેશ રૂપ હૈ ક્યા યહાં ક્યા કહેતે હૈ પુણ્ય અને પાપ બંને દુઃખ છે તો એનું જે ફળ મળતું હશે શું સ્વર્ગની ગતિ તે કેવું હશે એ પણ દુઃખરૂપ જ છે એમ કે છે ક્લેશ સ્વરૂપ છે શું કહ્યું ફરીથી લઉં છું બહારમાં વસ્તુના સ્વરૂપથી આ જાન કોઈ મોટા મહંતના સાધુના નામ ધરાવીને ફરે પણ એ માર્ગ યથાર્થ નથી। પૂર્વના પુણ્યના ઉદયકાળમાં બહારમાં સામગ્રી ભક્તો દેખાય છે અરે એનાથી નીચે આવે ને આપણે થર્ડ અચ્છા 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 બીજા લાઇનથી લઉં છું, પુણ્ય પાપના જે વિકલ્પો છે તે દુઃખ છે, આનંદની ઉલટી અવસ્થા છે, વિપરીત અવસ્થા. હવે ગુલાટ ખાઈને અંદરમાં આનંદ સ્વરૂપ હું ભગવાન છું એમ ભાન કરતા અને એમાં જ લીન થતા સાક્ષાત અતિન્દ્રિય મહાઆનંદની પર્યાય પ્રકટ થાય છે અને એનું નામ મોક્ષ છે. આહા, જે દુઃખ ઉભું થયું છે એ તો સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ ક્ષણિક ને કૃત્રિમ છે. આ ત્રણ નવી વાતો બતાવી જોઈએ. એક એમાં તો રિપીટેડ છે, શું છે? જે દુઃખ ઉભું થયું છે એ તો સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ છે, ક્ષણિક છે અને કૃત્રિમ છે. હવે જે કૃત્રિમ ઉભું થયું છે એનાથી વિરુદ્ધ અંદર અકૃત્રિમ શું છે? શું કીધું? જે દુઃખ ઉભું થયું છે તે સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ છે, તો તે દુઃખથી વિરુદ્ધ અંદર અવિરુદ્ધ અકૃત્રિમ સ્વરૂપ શું છે? તો કહે છે કે અંદર એકલો અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ નિત્યાનંદ પ્રભુ આત્મા અકૃત્રિમ છે. કેમ એને અકૃત્રિમ કહેવામાં આવ્યો છે? બોલો બોલો, આત્માને અકૃત્રિમ કેમ કહેવામાં આવ્યો છે? હા, સ્વયં સિદ્ધ હૈ, ખ્યાલ મેં આયા? વો અનાદિકાલ સે હૈ, ઉસકા બનાને વાલા કોઈ નહીં હૈ, ઓર વો અનાદિકાલ સે ક્યું હૈ? ક્યુંકે ઉસમે યા ઉસમે ક્યું? હરેક દ્રવ્ય મેં અસ્તિત્વ નામ કા ગુણ હૈ, જો યહ બતાતા હૈ કે જિસ શક્તિ કે કારણ સે દ્રવ્ય કભી ઉત્પન્ન હુઆ હી નહીં હૈ, ઓર કભી ઉસકા નાશ ભી નહીં હોને વાલા હૈ. ખ્યાલ મેં આયા? તો યહાં કહેતે હૈ કે વો સ્વયં કૈસા હૈ? અકૃત્રિમ હૈ. યાને કૃત્રિમ કહાં કોણ કહે, કિસકો કહા જાયેગા? તો જો લોગ માનતે કે ભગવાન ને વિશ્વ બનાયા હૈ, તો બનાયા હૈ યાને જો નહીં થા ઉસકો બનાયા, વો ક્રિયા હુઈ બનને કી, તો વો કૃત્રિમ હો ગયા. ઓર યે કૈસા હૈ? સ્વયંભૂ હૈ, સ્વયં સિદ્ધ હૈ. ખ્યાલ મેં આયા? તો યે સ્વયં સિદ્ધ હૈ હમને કહાં પડા થા ભાઈ? અરે ઠરો ઠરો, અમારે ભાઈ સાહેબ બોલતે હૈ ના, ક્યા નામ હૈ, પિનાંગભાઈ, પંચાયત એમી નહીં બેઠતે થે, ઓફિસ મેં બેઠતે થે. અચ્છા, હા, ઇન્દુબેન કોણ સા પઢા થા આપને? હા, શ્લોક બોલો. ક્યો કેનેડા ગઈ થી? કિસકો યાદ હૈ શ્લોક? હા બોલો. તત્વમ સલ્લાક્ષણિકમ સન્માત્રમ. અરે અભી સબ લોગ બોલને લગે. હા બોલો બોલો બોલો. હા બહુત અચ્છા. દેખો યે હમ પઢ કે ભૂલ જાતે સબ લોગ. હા, આપકો યાદ થા? બોલો બોલો, જોર સે બોલના. કોઈ વાત નહીં. હા, તસ્માત્ બહુ અચ્છા. યે હમને ઉસ શ્લોક મેં પઢા થા કે યે દ્રવ્ય કોણ સા? જીવ દ્રવ્ય નહીં, પ્રત્યેક દ્રવ્ય સ્વતઃ સિદ્ધ હૈ, સત લક્ષણ હૈ જિસકા, જો અનાદિ નિધન હૈ, વગેરે વગેરે. તો યહાં વો કહે રહે હૈ કે અંદર એકલો અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ નિત્યાનંદ પ્રભુ આત્મા અકૃત્રિમ છે, અને તે અતિન્દ્રિય આનંદ જે સ્વભાવરૂપ છે તે પર્યાયમાં પ્રાપ્ત થયો, તેનું નામ મુક્તિ અથવા કે મોક્ષ છે. ખ્યાલ મેં આયા? આહા હા, અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ મોક્ષ, શક્તિરૂપ ધ્રુવરૂપ તો ત્રિકાળ વિદ્યમાન છે જ, કેમ કે વસ્તુ છે તે મુક્ત સ્વરૂપ જ છે, બંધ સ્વરૂપ નથી, અને તેની પર્યાયમાં વર્તમાન હાલતમાં અવસ્થામાં સાક્ષાત મહાઆનંદનો લાભ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પ્રકટ રૂપે મોક્ષ છે થાય છે. પર્યાયમાં महा अतीन्द्रिय आनंदनी प्राप्ति नु नाम मोक्ष छे। यो यो तो पूछने वाले तो ऐसा है, पूछते हैं मोक्ष है क्या, कहीं किसने देखा है क्या, वहां से कोई वापस आके बताया क्या किसी ने, अभी क्या बोलना। ये पर्याय में जो महा अतीन्द्रिय आनंद की जो प्राप्ति होती है उसी को मोक्ष कहा है। आवी मोक्षनी व्याख्या, हवे ते महा आनंदना लाभनो पूर्ण आनंद दशाना दशानी प्राप्ति नो उपाय शुं ते कहे छे। ते महा आनंद नो उपाय पूर्वोक्त निरुपचार, निरुपचार एटले निश्चय थी रत्नत्रय रूप परिणति छे, जे उपचार नथी एवो निरुपचार। जुओ कलश दशमा रत्नत्रय ने विकल्प रहित कया हता ने आई तेने निरुपचार कहे छे। निरुपचार एटले शुं के उपचार विना ना, आरोप कर्या विना ना, अनारोपित रत्नत्रय। आहा आवी अनारोपित निरुपचार रत्नत्रय रूप परिणति ते मोक्षनो उपाय छे। समझाय छे काई? अही आ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय ने परिणति एटले पर्याय कही छे। सम्यक दर्शनादि गुण छे ने आई एम नथी। जुओ ने आई शू कहे छे कि ए त्रणे परिणति छे। उन्होंने कहा ये गुण है ना, तो कहते नहीं ये परिणति है, पर्याय छे। सम्यक दर्शन आदि पर्याय छे, अवस्था छे। हा हा अवस्थाई तो त्रिकाली चीज छे। अवस्थाई यानी समझे, अवस्थाई का अर्थ ऐसा है जिसकी अवस्था हो वह अवस्थाई, जैसा जिसका गुण हो वह गुणी, जिसका धन हो वह वो पहले धन समझ में आता है। तो अवस्थाई यानी देखो बात तो पहले ये नक्की करना चाहिए ना कि जो द्रव्य जो होता है ना वो द्रव्य कभी भी पर्याय रहित नहीं हो सकता। अवस्था हालत दशा पर्याय परिणति परिणाम जो भी आपको कहना है कहो, तो वो जो अवस्था धारण करने वाला जो है उसको अवस्थाई कहा। अब यहां आत्मा की बात चल रही है तो वो आत्मा को इंडिकेट करता है वो शब्द। तो क्या कहते देखो, सम्यक दर्शन आदि पर्याय छे, अवस्था छे। आहा अवस्थाई तो त्रिकाली चीज छे, पण तेनु सम्यक दर्शन तेनो अनुभव करीने प्रतीति, तेनु सम्यक ज्ञान तेनो अनुभव थईने ज्ञान अने तेनु सम्यक चारित्र तेमा स्थिरता लीनता ए त्रणे पर्याय छे। अवस्था छे, हालत दशा छे, अंश छे अने तेने आई परिणति कही छे। अभी कोई भी बोलेगा नहीं, मैं जिसको पूछूंगा वही उत्तर देंगे। यहां तो हमको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों को पर्याय कहा गया है, बराबर। तो ये तीनों जो है पर्याय वो कौन से द्रव्य के कौन से गुणों की पर्याय है ये मुझको पूछना है। हाँ कौन बता पाएगा, भाभी जी आप बता पाएगी? नहीं। अच्छा सुनना आप, और सुनने के बाद मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं कि केवल सुनने के लिए आना है। हाँ भूपेन भाई आप बताएंगे? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये पर्याय है ऐसा अभी हमने पढ़ा। तो पर्याय है तो कौन से द्रव्य के कौन कौन से गुण की कौन कौन सी पर्याय है? जीव द्रव्य के सुनाई दिया डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं? क्या बोलो, क्या बोला उन्होंने? हाँ ज्ञान दर्शन और चारित्र की क्या है, कौन से गुण की कौन सी पर्याय है? कोई बात नहीं, बिना बिना आप बताएंगे? चार इतर गुण की कौन सी पर्याय है? हाँ, कौन सी पर? तीन पर्याय की बात बताई ना हमने। ठहरो ठहरो, आप बराबर रास्ते पे हैं, मम्मी जी आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन यह स्वभाव पर्याय है। बहुत अच्छा, आगे। बहुत अच्छा, यानी सम्यक ज्ञान ये जो पर्याय है वह जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की सम्यक पर्याय है, स्वभाव पर्याय। बहुत अच्छा। हाँ, नहीं, चंद्रिका बेन, कौन सी पर्याय, कौन से? हाँ, तो उसका नाम क्या? सम्यक चारित्र। देखो बात कितनी है, क्या बोलते हैं, बहुत ट्रिपल, यानी बताने में दिक्कत हो जाती है, ऐसा नहीं चाहिए। यहां आवे तो पूरी बात समझना चाहिए, और नहीं समझे तो पूछना, यह आपकी फर्ज बैठती है कि भाई मुझको आता है कि नहीं। और ऐसा कभी नहीं समझना कि मेरे को ये बात नहीं समझती तो लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी ये प्रश्न पूछा, कम से कम मैं 5 जनों को पूछा हूं, तो अभी 10 में 5 नहीं जानते तो क्या उसमें बड़ा बात है? हां, ख्याल में है ना? तो पूछना साहब, आप ऐसा चिंता नहीं करना, हम तो जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। हमें तो लोग ऐसे चाहिए कि हम कहते इसलिए माने, ऐसा है नहीं। जिनेंद्र भगवान भी ये कहते हैं कि ये जो शास्त्र है वह तो परीक्षा प्रधान ही है, आज्ञा प्रधान ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर सही बात नहीं समझ में आती है तो बस आपने कहा और हमने माना, तो दूसरा कोई आएगा, दूसरी कोई बात बताएगा तो तुम उसके पीछे लगोगे। जो वस्तु स्वरूप है वो हमें समझना चाहिए, और इसके लिए कोई भी प्रश्न हो पूछना, ऐसा बिल्कुल अंदर से क्या बोलते हैं, कमीपना महसूस नहीं करना, क्योंकि हम पर्याय जितने थोड़ी है, हम तो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अभी तो सुना हमने, तो जो त्रिकाली ऐसा जो मेरा स्वभाव भाव है, तो हम पर्याय जितना क्यों स्वयं को मानते कि भाई मेरे को इतना नहीं हंसा, ये हंसेगा वो हंसेगा, कुछ नहीं, हंसने दो तो बोलना, क्या स्माइल एट मी, टॉक टू मी नहीं बोलना, क्या ख्याल में आया? तो बात तो ऐसी है भैया कि ये सम्यक दर्शन जो है वह जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय है, सम्यक ज्ञान जो है वह जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय है, और सम्यक चारित्र ये जो है वह जीव द्रव्य के चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय है। अब ये जिनको प्राप्त करना है तो उसका हमको नाम भी तो बराबर याद होना चाहिए, और जो हमें प्राप्त करना है वो क्या है, वो तो द्रव्य है, गुण है, क्या पर्याय है, ये तो समझना चाहिए। पर्याय है तो स्वभाव रूप है या विभाव रूप है, हा? ये भी तो समझना चाहिए। हमें तो प्राप्त करना है क्या, सम्यक दर्शन, पर सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? वो 58 नंबर के पेज पे लिखा है, तो वो पुस्तक को होगा सम्यक दर्शन, तेरे को क्या होने वाला है? ख्याल में है ना? तो देखो यहां क्या कहते हैं, ये अवस्थाई जे छे, अभी बताया ना उन्होंने, अवस्थाई यानी जो अवस्था धारण करने वाला ऐसा जो आत्मा है, इसके तीन प्रकार की अवस्थाएं हमें बताई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अभी यहां क्या कहते हैं कि इसको मैं जुदा जुदा करके आपको समझाना चाहता हूं। अभी अभी बात तो यही निकली ना, कि ये जो हमने देखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको मैं भेद करके समझाऊंगा, तो अभी मूल में ही हमको उसका पता नहीं होवे, तो फिर आगे क्या आएगा? आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि क्या बहुत बेसिक बात है, लेकिन है बेसिक बात है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं भी बेसिक से समझा हूं, और मैं अभी सब लोग ऐसा बेसिक से जाने इस चाह से आपको बता रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं। क्या है देखो, महा आहा महा आनंदनो साक्षात लाभ थाय तेनु नाम मोक्ष छे, पृष्ठ क्रमांक 58। अने ते महा आनंदनी प्राप्ति नो उपाय पूर्वोक्त निरुपचार अर्थात अन आरोपित, एटले जेना ऊपर आरोप कर्यो नथी पण जे वास्तविकता छे ते अन आरोपित वास्तविक अभेद रत्नत्रय रूप परिणति छे। ये अभेद परिणति क्यों कहा? क्योंकि देखो, जब किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, तो पहले ये समझना कि आत्मा जो है उसमें अनंत गुण है, अनंत गुण में अनंत गुण तो स्वभाव रूप से ही परिणत है, अभी भी जो कोई मिथ्या दृष्टि होगा उसके भी स्वभाव रूप से परिणति हो रही है उसकी, और अनंत गुण विभाव रूप से परिणत हो रहे हैं क्या? तो जो जो विभाव रूप से परिणति हो रही है, जब इस जीव को आत्मानुभव होता है कहो, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्राप्त होता है कहो, तब ये तो तीन गुण की मुख्य करके उनको रिप्रेजेंट करके सारे अनेक गुणों की बात ली है, तो वहां सब गुण वहां जो है जो विभाव रूप से परिणत हो रहे थे वो एक साथ एक समय में सबके सम्यक परिणति चालू होती है। अभी आप में अस्तित्व गुण है ना, तो उसका स्वभाव परिणमन चल रहा है या विभाव परिणमन? तो आपको सम्यक दर्शन हुआ है, फिर भी देखो देखो घबराना मत नहीं, मैं मेरी बात लेता हूं, आपको नाराजी होती है, तो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी मेरी अस्थि जो है वो तो स्वभाव रूप है ना, क्या विभाव रूप अस्थि थोड़ी है मेरी? अंदर से ही विभाव रूप स्वभाव रूप है। भाई यानी क्या है? भाई में काय का व्यवहार? देखो, तुम्हारा जो अस्तित्व है बहन, तुम्हारा हयाती जो है, विद्यमानता जो है, वो व्यवहार से है क्या निश्चय से है? हाँ, ख्याल में है ना। तो आप में जो अस्तित्व गुण है, अच्छा चलो, आप में उत्पाद वेद रूपत्व नाम का गुण है, यानी समय समय में नए नए पर्याय का उत्पाद, पुराने पर्याय का व्यय, और तुम कायम रहना, ऐसा जो उत्पाद वेद ध्रुवत्व नाम का जो गुण है वो स्वभाव रूप परिणत हो रहा है या विभाव रूप? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, स्वभाव रूप है ना। अगर स्वभाव रूप नहीं परिणमेगा तो अपना क्या होगा? कि अपना जो अस्तित्व है, सत्ता जो है, वह विभाव रूप होगी। अरे सत्ता जो है वह स्वभाव रूप ही है, ऐसे अनेक गुण है।
एक प्रश्न है,
आपको
छह सामान्य गुण में कौन सा गुण विभाव रूप परिणमन करता है?
प्रश्न समझ में आया? छह सामान्य गुण के नाम तो याद है ना आपको?
याद,
हाँ है, याद है। हाँ बोलो लता बहन।
हाँ, सामान्य गुण
हाँ, ये छह गुण तो उन्होंने सही रूप से बताया।
विभाव परिणमन किसका होता है?
हाँ, देवेंद्र भाई बता रहे हैं। अभी तुम्हारा पूछ रहे हैं। हाँ तो सिद्धों की बात कहाँ ली? अभी तुम्हारा, हाँ जी, अरे हमने तो जितना पूछा जाए उतना ही।
देखो, उत्तर क्या चाहिए? विभाव किसका होता है ऐसी प्रश्न पूछा, तो स्वभाव किसका होता है उसकी नहीं मान जल्दी।
ख्याल में आया नहीं आया?
हेतल को नहीं ख्याल में आया।
अभी नहीं ख्याल में आया तो देवेंद्र भाई को सुनो, बताओ, सुनो भाई, चलो तुम्हारी इच्छा भी तो पूरी होने दो। बोलो बोलो बोलो, अभी क्यों रुकते हो?
देखो एक ही आकार रहे वो स्वभाव रूप नहीं है जिसमें निमित्त नहीं होता है, निमित्त की अपेक्षा का बिना।
मेरा नहीं, नहीं, मेरा आपका ऐसा प्रश्न है कि प्रदेश तो गुण है तो उसमें द्रव्यत्व का रूप है कि नहीं, तो उसका निरंतर परिणमन होगा कि नहीं, फिर आप बोल रहे हैं ना वो। चलो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बताया उन्होंने, जो छह सामान्य गुण है उसमें प्रदेशत्व गुण का अभी अपना विभाव रूप परिणमन हो रहा है, बाकी अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व आदि जो गुण है उसका तो स्वभाव रूप ही परिणमन है। अभी ऐसे बहुत सारे हैं, अपने में अभाव शक्ति है, अभाव अभाव भाव, पहले तो अभाव फिर भाव, या भाव कहो अभाव कहो को भी कहो, फिर कहो अभाव भाव, भाव अभाव, अभाव अभाव, भाव भाव भाव, ये सारी शक्तियां जो है, कर्ता है, कर्म है, करण है, ये जो सारी शक्तियां षटकारक वाली जो है वो सारी स्वभाव रूप से परिणति है। ख्याल में ये तो और डिटेल में जितना जाओ और गहरा बहुत है, लेकिन हमें इतना ही समझना है कि जब यह तीन बातें हो रही है, कौन सी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जब बात करते हैं, तो इतना हमें इतना ही समझना है कि इसके साथ में रहने वाले अन्य जो विभाव रूप परिणत करने वाले जो गुण है उनका भी स्वभाव रूप परिणमन चालू होता है। अगर आपने श्रीमद जी को भी सुना होगा तो सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व का, तो गुणांश का अर्थ क्या हो गया, पर्याय, सर्व गुणों की जो पर्याय है उसी को सम्यक्त्व का है, जो सम्यक रूप से परिणत होती है। ख्याल में, तो यहां तो बात तीन की कह रहे हैं, इसलिए क्या कहा देखो, किधर गया, हाँ ये सेकंड लाइन, महाआनंदनी प्राप्ति ने उपाय पूर्वोक्त निरुपचार अर्थात अनारोपित वास्तविक अभेद रत्नत्रय रूप परिणति छे, तो अभेद रत्नत्रय रूप यानी ये तीनों का मिलकर ऐसा जो एक जो रत्नत्रय है, ख्याल में है, उसकी परिणति की बात उन्होंने की है, जो आय व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष मार्ग वा मोक्षनो उपाय छे एम वात सुद्धा करी नथी, यानी व्यवहार रत्नत्रय ऐसा ही इसको मोक्ष मार्ग कहने में भी नहीं आया है और वह मोक्ष का उपाय भी है ऐसा भी नहीं कहा गया है। भाई निर्मल निरुपचार अभेद रत्नत्रय रूप परिणति ए एकज मोक्षनो उपाय छे, आहा त्रिकाली निज परम तत्व नु परिज्ञान ते ज्ञान, अभी यहां ज्ञान सम्यक ज्ञान किसको कहना भी है? फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जो अपना स्वभाव कैसा है त्रिकाली रहने वाला, ऐसा जो अपना निज परम तत्व है उसका परिपूर्ण ज्ञान होना उसको कहा गया है ज्ञान, त्रिकाली निज परम तत्व नी प्रतीति एटले श्रद्धान ते दर्शन, अने त्रिकाली निज परम तत्व में स्थिरता लीनता रमणता ते चारित्र एम आत्मानी निर्मल निरुपचार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय परिणति ते एकज मोक्षनो उपाय छे, समझाणु काए त्रण काल मां होए परमार्थनो एकज पंथ, ऐसा श्रीमद जी भी बोल के, अभी मेरा कोई वर्डिंग गलत होता होगा अर्थ तो वही है, क्या है मालूम है आपको,
एक होए त्रण काल मां परमार्थनो पंथ,
हाँ ऐसा ही कुछ है। हम थोड़ा सा शब्द आगे पीछे बोल गए लेकिन अर्थ तो वही है। तो यहां क्या कहते हैं देखो, रत्नत्रय परिणति ते एकज मोक्षनो उपाय छे, अभी अगली लाइन वड़ी निरुपचार रत्नत्रय रूप अभेद परिणति मां अंतर्भूत रहेला आ त्रणनु एटले ज्ञान दर्शन ने चारित्रनु जुदू जुदू निरूपण होय छे, अंतर्भूत रहेला आम कीधु छे ने, आम कीधु एटले शू काय निश्चय मां ए त्रण भेद रहेला छे एम वात नथी, तो शू छे निश्चय रत्नत्रयनी साथे सहचरपणे ते होय छे एम वात छे, अने तेनू भेद रूप जुदू जुदू निरूपण होय छे, अभेद ने समझाववो छे ने, तो ते भेद वाला अर्थात विकल्प वाला राग वाला व्यवहार रत्नत्रय द्वारा अभेद ने समझावे छे। कई रीते तो कहे छे आ ज्ञान छे आ दर्शन छे ने आ चारित्र छे एम भेद पाड़ी ने। वास्तव में आत्मा में ऐसे अलग अलग भेद है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो समझाने के लिए भेद से अभेद का कथन समझाने के लिए समझाए जाने के लिए वो बता रहे हैं। आ ज्ञान छे आ दर्शन छे आ चारित्र छे एम व्यवहार वड़े भेदना निरूपण द्वारा निश्चय ने समझावे छे। आ ज्ञान छे एम जे भेद पड़ियो ते व्यवहार छे, यानी कोई भी वस्तु का भेद से कथन करना उसको उपचार का या व्यवहार का कथन कहते हैं। तो इन्हें व्यवहार कहो, यानी वो व्यवहार कहो यानी व्यवहार नहीं कथन छे एम समझवू। अने ते द्वारा निश्चय ने समझावे छे भेद नो आश्रय करवा भेद नु निरूपण नथी पन अभेद ने समझावा भेद नु निरूपण होय छे। ये देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बहुत बढ़िया समझाया है कि म्लेंज को म्लेंज की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, लेकिन म्लेंज को म्लेंज की भाषा में समझाते समझाते तू स्वयं म्लेंज मत बनना, ऐसा कहते। यानी व्यवहार से तू निरूपण करता है तो अवश्य कर, क्योंकि सामने वाले को व्यवहार द्वारा ही वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, लेकिन वैसा ही वस्तु का स्वरूप है ऐसा तू मानता है तो गड़बड़ी हो जाएगी। हवे कहे छे आ शास्त्र मा जे गाथा सूत्रों आगळ कहेवाशे तेमा दर्शन ज्ञान चारित्रना लक्षण जणाशे। व्यवहार ना हो निश्चय रत्नत्रयना लक्षण तो पहला त्रीजी गाथा मा आवी गया छे, हवेना गाथा सूत्रों मा व्यवहार रत्नत्रयना लक्षण जणावशे आवी वात छे। अभी 11 नंबर का जो कलश है श्लोक है वो पढ़ेंगे, पेज नंबर 55 निकालिए।
मोक्षोपायो भवति यमिनां शुद्धरत्नत्रयात्मा यात्मा ज्ञानं न पुनरपरं दृष्टिरन्यापि नैवम् शीलं तावन्न भवति परं मोक्षभि प्रोक्तमेतत् बुद्ध्वा जन्तुर्न पुनरुदरं याति मातु सभव्य। चौथी लाइन में जो पहला शब्द है
बुद्ध्वा,
वो पहले वो आधा ध आधा और दा पूरा किया है, तो वहाँ पहले द आधा फिर ध आधा फिर वा पूरा लिखना बुद्ध्वा। हाँ दला ध जैसे सिद्ध कहते ना, वो सिद्ध कह के उसका फिर वो आधा करना और फिर वा पूरा करना।
ध आधा ध आधा चाहिए क्या? ध ध आधा ध आधा
द ध आधा आधा और वा पूरा बुद्ध भा बुद्ध ध्वा।
श्लोकार्थ समझ में आया? देखो बू लग शब्द लिखना फिर बाद में द नो खोड़ो ध
और द में वो आधा द ध नीचे लिखना
और वा पूरा बुद्धवा। श्लोकार्थ मुनियों ने मोक्षनो उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक इंटू ब्रैकेट जो है ना शुद्ध रत्नत्रय परिणति ये परिणमे लो आत्मा छे। ज्ञान आनाती कोई बीजू नथी दर्शन पण आनाती बीजू नथी अने शील एटले चारित्र पण बीजू नथी। आ मोक्ष ने पामनाराओ ए अरहंत भगवंतोए कहूं छे आ जाणी ने जे जीव माताना उदर मा फरीने आवतो नथी ते भव्य छे। यानी जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उसको भव्य यहाँ कहा गया। अभी पृष्ठ क्रमांक 58 पर वापस आइए, श्लोक 11 श्लोकार्थ ऊपर नु प्रवचन। मुनियों ने मोक्षनो उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक एटले शुद्ध रत्नत्रय परिणति ए परिणमेलो आत्मा छे। जो कलशमां यमी नाम शब्द छे ने, मतलब के यमियों ने एटले संयमियों ने एटले मुनियों ने भाई मुख्यपणे तो आई मुनिवरोनी वात छे, तेना पेटामां श्रावक अने समकीती पण आवी जाय छे। पेटामां एटले गर्भित ये सारे लोग कहे छे मुनियों ने मोक्षनो उपाय शुद्ध रत्नत्रय रूप आत्मा छे। शुद्ध रत्नत्रय रूप मोक्षनो शुद्ध रत्नत्रय मोक्षनो उपाय छे एम न कहता मोक्षनो उपाय शुद्ध रत्नत्रय मय आत्मा छे एम कहीने अभेद करी नाखू छे। समझाणू काई क्या कहते देखो ये विशेष बात बताई है उन्होंने। पहले कहते हैं मुनियों ने मोक्षनो उपाय शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप आत्मा छे ये उन्होंने को बात बतानी है, यानी कि तुम्हें आसरा किसका लेना है तो शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप जो स्वयं आत्मा है उसका आश्रय लेना है। अभी कहते हैं शुद्ध रत्नत्रय मोक्ष नो उपाय छे, यानी मोक्ष शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप है ऐसे मोक्ष नो उपाय छे एम न कहता मोक्ष नो उपाय शुद्ध रत्नत्रय मय आत्मा छे, यानी जो आत्मा कैसा है तो शुद्ध है हा? और वो जो रत्नत्रय रूपी जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है वह आत्मा में से ही निकलने वाली है, इसलिए आत्मा को ही शुद्ध रत्नत्रय मय आत्मा कहा गया है। और उसका अगर कोई आश्रय लेता है उसी में लीनता धारण करता है तो उसको शुद्ध रत्नत्रय रूप पर्याय उत्पन्न होगी या मोक्ष होगा आगे जाके। तो कहते हैं
देखो के,
बोलो बोलो।
पहले हमने जो निमित्त उपादान की जो उपादान के भेद प्रभेद देखे थे ना अभी संडे को, तो उसमें क्या क्षणवर्ती पर्याय दो टाइप की क्षणवर्ती क्षणिक उपादान है वो दो टाइप का देखा था। कौन कौन सा पिनाम बोलो बड़ा नाम क्या है। हाँ तो उसमें लिखा था कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य वो कारण, जैसे क्रम से पर्याय हो रही है एक दो तीन चार, अभी नौ और दस नंबर की पर्याय देखेंगे तो नौ दस नंबर की पर्याय हुई एक कार्य है तो नौवे पर्याय से युक्त द्रव्य को कारण कहा और दसवीं पर्याय से युक्त द्रव्य को कार्य कहेंगे। तो वैसे यहां लेना मोक्ष का उपाय क्या है, अभी मोक्ष ये पर्याय है ना, अभी उसका कारण क्या है तो मोक्ष के पहले वाली पर्याय से परिणत आत्मा यानी शुद्ध रत्नत्रय से परिणत आत्मा को ही यहाँ कारण कहा, उसी को यानी मोक्ष का उपाय देखो यहाँ है ना कि शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपे परिणमे लो आत्मा, यानी उस विशिष्ट पर्याय से युक्त ऐसा आत्मा वो द्रव्य कारण कहा। और जो अगली वाली पर्याय कौन सी है तो मोक्ष की पर्याय तो उसको हम कार्य कहेंगे। यहाँ अकेले पर्याय को कारण नहीं कहा, उस पर्याय से युक्त द्रव्य को कारण कहा।
देखो यहाँ पर कह दिया है शुद्ध रत्नत्रय मोक्षनो उपाय छे एम न कहता मोक्षनो उपाय शुद्ध रत्नत्रय मय आत्मा छे एम कहीने अभेद करी नाखू छे, यानी वो पर्याय जुदी है और आत्मा जुदा है ऐसा दोनों का भेद न करते हुए दोनों को साथ लेके अभेद करी नाखू छे एम कहे छे। आहा हा धर्मात्मा ने मोक्षनो एटले साक्षात परम आनंद नी प्राप्ति नो उपाय कहे छे, समझ में आया। शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपे परिणमे लो थेलो आत्मा छे, अहो भगवान आत्मा पोते शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणति ए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बने परिणमियों छे एम ही कहे छे। तो प्रश्न शंकाकार पूछते हैं कि आत्मा तो अपरिणामी छे ने, तो हमेशा अपरिणामी स्वरूप ऐसा आत्मा ऐसा कहते थे, तो उसने ये बात उठाई। वहां तो कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपे परिणमेलो छे एम, फिर यहां पूछ रहे कि भाई आत्मा ने तो अपरिणामी कहो छे ने, तमे एम केम बात करो छो। तो भाई आई पर्याय नु परिणमन लेवू छे ने, जे पर्याय परिणमे छे ते एनी एटले द्रव्यनी छे एम लेवू छे। केम के पर्याय द्रव्य गुण नो अंश छे। आहा हा, द्रव्य गुण जे त्रिकाल छे तेनो ज परिणमे छे, ते अंश छे, एटले के त्रिकाळी द्रव्यनो अंश छे ते परिणमे छे। अहीं अभेद करीने कीधुं छे के मुनियों ने धर्मात्मा पुरुषों ने मोक्षनो एटले परमानंदनी प्राप्तिनो उपाय शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतिए परिणमेलो आत्मा ज छे। अर्थात शुद्धपणे परिणत आत्मा ज मोक्षनो उपाय छे। लियो आवी वात बहु सूक्ष्म ने झीणी। कुछ समझ में आया? अभी उज्ज्वला ने तो आपको बहुत आसान तरीके से समझाया था। रिपीट करो फिर।
देखो अभी हमने जब कोई कार्य होता है तो उसमें हमने दो कारण देखे थे, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो निमित्त कारण तो पर में जाता है, परद्रव्य की पर्याय हो या स्वद्रव्य के अन्य गुण की पर्याय, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब जो उपादान कारण है उसमें हमने मूल में दो भेद देखे थे, एक तो त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान में उस द्रव्य को या उसके गुण को त्रिकाली उपादान कहते हैं, जो हमेशा ही, यानी जो जिसको हम द्रव्य शक्ति कहते हैं, जैसे विशिष्ट पर्याय रूप से होने की द्रव्य की शक्ति, जैसे सम्यक दर्शन रूप होने की शक्ति कौन से द्रव्य में है? च द्रव्य में से, जीव द्रव्य में। तो हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन ये कार्य हमको अपेक्षित है, तो उसका त्रिकाली उपादान कौन है? तो जीव द्रव्य स्वयं। या गुण की अपेक्षा कहना है तो श्रद्धा गुण है। ये तो द्रव्य शक्ति तो हमेशा पड़ी हुई है, फिर कार्य क्यों नहीं होता है? तब आचार्य कहते हैं कि उसमें क्षणिक उपादान नाम की भी वहां शक्ति पड़ी है, जिसको हम पर्याय की शक्ति कहते हैं। कि विशिष्ट पर्याय विशिष्ट समय में ही क्यों होती है? तो उसमें क्षणिक उपादान के दो भेद किए, एक तो पूर्व की पर्याय और एक उस समय की योग्यता। यानी जैसे हमने दो पर्याय देखी थी, एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। यानी अभी हमारा कार्य, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो 10 नंबर का कार्य हुआ,
सम्यक दर्शन
10 नंबर पे हुआ। तो उसका क्षणवर्ती कारण कौन है, क्षणिक उपादान कौन है? तो 9 नंबर की पर्याय का व्यय हुआ, ये एक क्षणिक उपादान हुआ। और दूसरा क्षणिक उपादान कि 10 नंबर की जो पर्याय है सम्यक दर्शन की, वो उसी समय में उत्पन्न हो ऐसी योग्यता द्रव्य में ही विद्यमान है, उसको कहते हैं तत्समय के पर्याय की योग्यता। शॉर्ट में हम कहते हैं तत्समय की योग्यता, परंतु ये समय की योग्यता नहीं है, ये पर्याय की योग्यता है जो उसी समय में होने वाली है। यानी हर एक द्रव्य में अनादि अनंत जो जो पर्याय होगी उसका योग्यता रूप धर्म विद्यमान है। यानी हमारी निश्चित समय में कौन सी पर्याय होगी ये पूरा निश्चित है, उसको कहते हैं तत्समय की पर्याय की योग्यता। यानी अभी हमने दो कारण देखे, अनंतर पूर्व यानी इमीडिएट प्रायर, पहले वाली पर्याय, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, खाली क्षणवर्ती पर्याय कहो या क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कहो,
द्रव्य कहो तो अच्छा यहाँ है,
क्योंकि अभी जिस अपेक्षा से यहाँ बात है, तो पहले वाली पर्याय से युक्त द्रव्य, जैसे अभी माटी के घड़े के ऊपर हम देखते हैं, पहले मिट्टी थी, फिर उसके सॉइल ऐसे गोला बनाया, पिंड बनाया, फिर वो कुम्हार ने चाक पे रखा, फिर उसके अलग अलग आकार होते होते फिर घड़ा बना। तो घड़ा होने के पहले वाली जो पर्याय थी उसका व्यय हुआ और घड़ा बना, तो पहली वाली पर्याय को भी क्षणिक उपादान में जिसका व्यय होकर ये पर्याय बनी उसको हम क्षणिक उपादान, यानी कौन सा क्षणिक उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय नाम का जो क्षणिक उपादान कारण है। अब यहां जो बात है तो उस पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य को कारण कहा। अब यहां जो हमारा मोक्ष के कारण की बात चल रही है, मोक्ष नाम की पर्याय प्रकट होगी तो उसके पहले वाली पर्याय कौन सी होगी, तो मोक्ष मार्ग की होगी। मार्ग पर से जाके हम मोक्ष में पहुंचे, जैसे बॉम्बे आगरा मार्ग, और पहुंचे कहां, आगरा में, वैसे मोक्ष मार्ग से निकलकर मोक्ष में पहुंचेंगे। तो ये मोक्ष मार्ग से परिणत जीव, अब मोक्ष मार्ग को यहां क्या कहा, शुद्ध रत्नत्रय, तो शुद्ध रत्नत्रय से यानी जिस आत्मा की शुद्ध रत्नत्रय रूपी अवस्था हो गई है, जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट किया है, ऐसा आत्मा ही कारण है। किसका कारण चल रहा है यहाँ,
मोक्ष का।
मोक्ष का तो मोक्ष मार्ग यह उपाय है, तो ऐसे मोक्ष मार्ग से परिणत जो जीव द्रव्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणत, यहाँ जब जब सम्यक दर्शन कहेंगे तो शुद्ध रत्नत्रय ऐसा ही समझना, यानी वो व्यवहार की बात ही उठाई नहीं है, यानी राग को व्यवहार कहते हैं इसी भी बात नहीं ली, ये अभी नियम सार की एकदम प्योर बात चलेगी यहाँ, जिसको जो है वही कहेंगे, वो व्यवहार की बात बाद में मेंशन करेंगे यहाँ, परंतु अभी तो ये निश्चय की बात सारी बताएंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित हुआ यानी जिसने पर्याय में प्रकट किया है, ऐसा आत्मा ही कारण है, वही मोक्ष का उपाय है। ख्याल में आए भाई,
यानी आत्मा को ही उपाय बताया, ख्याल में आया, वो कैसा आत्मा के शुद्ध रत्नत्र से परिणत आत्मा, और उसी को उसको उसी के इसके ऊपर चल के वो मोक्ष प्राप्त करे।
आगे
चलो, अभी कुछ बोलने नहीं समझाणु, कई वांदो नहीं, समझा से एक दिवस में बधु आवे तो बीजा दिवस केम आओ तमे, थोड़ा सा पहले प्रायर क्या है, निमित्त उपादान का भी इससे अभ्यास की आवश्यकता है, तो ये बात गले उतरने जैसी है, और आपको चाहिए तो कल और इसके बताएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सो वाणी नस्तक नमो सदा देतो। लता बेन बोलो, नमोकार मंत्र।